दास ठाकुर गौरव पार्षद उनके आविर्भाव तिथि तो उनके रचित एक भजन गाएंगे मंगलाचरण में। आप सभी साथ जानते होंगे, परम करुणा प्रभु द्विजना निताई गौर चंद्र। और पहले से मैं एडवांस माफी मांग लेता हूं, मुझे गाना नहीं आता है, तो कोई गलती हो तो आप एडजस्ट करेंगे। परम करुणा प्रभु द्विजना निताई गौर चंद्र।
संसारे मजिया
अपना करम गुंजाए समाना कहै लोचन दास
परमहंस परिव्राजकाचार्य।
अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इसकम संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। नित्रापुष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। गंगा देवी जमुना देवी की। वृंदा देवी तुलसी महारानी की। ग्रंथराज भागवत महापुराण की। जुग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री गुरु गौरांग की। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं, आप प्रतिदिन प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आते हैं, तो भागवत दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रंथ भागवत, एक व्यक्ति भागवत। कभी कभी प्राय कभी कभी आप व्यक्ति भागवत के बारे में सुनते हैं और प्राय समय में ग्रंथ भागवत सुनते हैं। इसमें व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत में कोई खास अंतर नहीं है। जितने आपको फल, जितने प्रभाव आपको ग्रंथ भागवत सुनने से होता है, उससे कई दो चार चना ज्यादा फल उसी में व्यक्ति भागवत के बारे में सुनने से होगा। क्यों? क्योंकि ग्रंथ भागवत में भगवान के चरित्र विशेषतर वर्णन है, भगवान के साथ भक्त के संबंध भी वर्णन है, भक्त चरित्र भी है, लेकिन व्यक्ति भागवत केवल भक्त चरित्र है। भगवान स्वयं भागवत में अनेक जगह में कहते हैं, मद भक्त पूजा अधिक। भगवान कहते हैं मेरे से मेरे भक्तों का पूजा अधिक होता है और मैं अजित हूं, किसी प्रकार से मुझे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भक्तों के भाव और प्रेम में हार जाता हूं, जीत जाता, उनके द्वारा जीता जाता हूं। तो अभी आप लोग बोलिए, आप लोग हमेशा फायदा चाहते हैं, तो हारे हुए भगवान के पास जाएंगे ना जीते हुए भक्तों के पास जाएंगे? भगवान के पास जाने से, भगवत कथा सुनने से अवश्य कल्याण है जीव का, यही ध्येय वस्तु है। लेकिन अगर भगवान के जो निजजन है, जो भक्त है, जो हमारे जैसे हैं, उनके बारे में सुनने से हम लोग को भक्ति में केवल उसका भक्ति प्राप्त नहीं होगा, भक्ति करने के लिए प्रेरणा, उत्साह और बल प्राप्त होगा, ये निश्चित है। तो इसलिए कुछ अधिक है व्यक्ति भागवत का बारे में सुनना। तो श्री लोचनदास ठाकुर, ऐसे गौरांग महाप्रभु के जितने गण हैं, ऐसे कहा गया है शास्त्र में, गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। आप अगर कृष्ण भगवान के पास, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है ना, उनके पास जाना चाहते हो, तो एक सटकट उपाय फॉर्मूला क्या है ना, गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। गौरांग महाप्रभु के पार्षद गण को नित्य सिद्ध, कोई साधारण ऑर्डिनरी व्यक्ति हमारा जैसे हुड़बक मत मानिए, उनको परम भागवत मानिए, नित्य सिद्ध पुरुष हैं। ऐसा केवल मान्यता करने से, मान लेने मात्र से ही आप कृष्ण के हो जाएं। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। केवल इतना मानने से, तो ये गौरांग के संगी है श्री लोचनदास ठाकुर, ऐसे कहा गया है। श्री लोचन दास ठाकुर आपने पूर्व जन्म में, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के जो नित्य पार्षद होंगे, गौरांग महाप्रभु कौन है, क्या उनका आईडी है, टू इन वन, केवल कृष्ण भगवान नहीं, आधा बोले क्या है, राधा कृष्ण दोनों है, मिलित तनु, तो राधा कृष्ण दो हैं, एक बपुमाए है, तो उनके कोई पार्षद होगा तो मतलब उनका ही होगा ना, राधा कृष्ण का ही होगा, चाहे राधा रानी के हो, कृष्ण के हो, किसी उनका होगा, नहीं तो ये कैसे हो सकेगा, दोनों में कैसे नहीं होगा। तो इसलिए जो भी गौरव पार्षद है उनको समझ लो कि वो निश्चित प्रजजन है, इसलिए तो बोले ब्रजेंद्र सुत पास जाएंगे, क्योंकि ये ब्रज के हैं, वही होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। तो इसे कहा गया कि लोचनानंद ठाकुर वो पहले उनके पूर्व जन्म में ब्रज में एक सखी थे, श्री राधिका की सखी, उनके इसे कहा गया कई प्रकार में अलग अलग नाम, जो भी हो नाम, जो भी हो, एक सखी थे ब्रज में। तो बाद में उन्होंने क्योंकि उन्होंने सखी के रूप में राधा कृष्ण के मिलन लीला करा रहे थे, उसी रस में थे, तो बाद में उन्होंने गौरांग लीला में भाग लेने के लिए नवदीप के पास, वर्धमान जिला है आप जानते, प्रसिद्ध वर्धमान जिला, अनेक गौरव पार्षदों की श्रीपाठ वहां है, वर्धमान जिला में काटुआ ग्राम, काटुआ ग्राम किस लिए प्रसिद्ध है, उसको कंटक ग्राम बोलते हैं, कांटा है, बड़े तकलीफ देता है सबको, कांटा घुस जाने से कितने कष्ट होता ना, तो इसे कष्ट दिया महाप्रभु, संन्यास लेकर सबको तकलीफ दी। तो इस कंटक ग्राम के ये सब डिविजन है, उसमें एक को ग्राम है, को ग्राम में अब कमलाकर दास उनके पिताजी थे, वैश्य परिवार था, उनके माताजी का नाम था सदानंदी, और उनके पितृकुल और मातृकुल में भी कोई पुत्र नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनके पिताजी के माताजी के बोले एकलौती बेटा, नहीं, उनके पिताजी के जितने भाई वंश है उनके किसी का भी कोई लड़का नहीं थे, लड़के लड़की नहीं थे, और उनके माँ का भी उनके मातृकुल में भी किसी का कोई संतान थे, एक ही दोनों कुल से ही, कई एक ही घर में नहीं, दोनों कुल में एक ही घर में एक ही लड़का ही हुआ। तो आप अनुमान लगाया कितने आदर और छले होंगे, कितने आदर का लाड़ प्यार उनको मिला होगा, है ना, दोनों कुल से बहुत उनको स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ। तो शिशु काल से उनको इतने प्रेम से स्नेह से उनको पालित किया गया, और शिशु काल से उनको विवाह कर दिया, शिशु विवाह तभी जमाने में इंडिया में चलता था, भारतवर्ष में, तो जिनके ऊपर बेटे के ऊपर ज्यादा स्नेह होता है ना, तो पिताजी से बढ़कर ज्यादा स्नेह कौन करने वाले होते हैं, दादा और नाना आदि, आदि नाना नानी, है ना, वो बोले कि बेटा हमारे इतने बढ़िया, एक ही तो बेटा है, पता नहीं क्या होगा, अब भी से एडवांस बुकिंग शादी कर दो, जो होगा होगा हम देखे नहीं, तो कर ही डाले, दोनों मिलकर उनकी शादी कर ही डाले, अब छोटे से उम्र के हुए होंगे तो उनके लिए कोई छोटी सी लाली देख करके शादी करवा दी, खत्म, अब करवा दिए, बोले एडवांस बुकिंग तो हो ही गया कन्फर्म, तो लालन पालन होने लगा कि इतने स्नेह जिसको मिलता है तो पढ़ भी नहीं सकता, जानते ना, हाँ, तो इसके कारण उन्होंने प्राय अधिकांश समय अपने मामा के घर में रहते थे, मातुलाय में, तो वहां पे उनके एक मामा थे जिनके नाम था पुरुषोत्तम दत्त, वो टीचर थे, पढ़े लिखे थे टीचर, तो उनको बोले कि दूसरा स्कूल में नहीं भेजेंगे, कोई मास्टर पीटेगा उनको, बस उठ कराएगा, तभी जमाने में आजकल सीपीटी तो नहीं लगता था, आजकल जैसा है इंडिया में, क्योंकि ये वैदिक नियम है, लालयत पांच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़यत, पांच वर्ष तक लालन पालन स्नेह दो, जैसे पांच साल के हो गया तो डांट पीट करना चाहिए, दस वर्ष तक, पांच से पंद्रह साल तक डांट पीट होना चाहिए, नहीं तो सुधरेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा फिर लड़का, तब प्राप्त तो षोड़श वर्ष से, सोलह साल को होने के बाद तो भाई जैसे व्यवहार करना चाहिए, फिर बेटा जैसा नहीं, नहीं तो उठा के थप्पड़ आपको मार देगा। तो ये नीति नियम है, तो इसी हिसाब से उन्होंने इतने स्नेह दिए, क्योंकि एक ही लड़का था दोनों कुल से, तो इतने स्नेह के कारण स्कूल कॉलेज में भेजे नहीं उसको, बोले ना मास्टर देखो। तो वो भी लड़के लोग तो बचपन से स्कूल जाना नहीं चाहते, तो उनको मामा के घर में जाकर के रहे, मामा घर में पढ़ाने लगे। तो उनके एक मामा जी टीचर थे पुरुषोत्तम दत्त, वो भी बड़े प्रेम से पढ़ाते थे, लेकिन वो सौभाग्य था लोचनदास ठाकुर के, तो उनके जो टीचर रहे, होम स्कूलिंग होता था, तो उनके जो टीचर थे पुरुषोत्तम दत्त महाशय, उन्होंने उनका गौरांग महाप्रभु के प्रति लगाव था, तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु के एक विशेष पार्षद श्री नरहरि सरकार के पास जाते थे उनसे गौर कथा सुनने के लिए, प्राय जाया करते थे, उनके भक्ति से प्रभावित थे श्री पुरुषोत्तम दत्त, तो उनके मामा जी, तो वो मामा जी के चलते भांजा साहब गए उनके वहां, मामा जी के तो कुछ मिला नहीं, वो जा जा करके रहे, उनको कथा का प्रभाव नहीं इतना पड़ा, लेकिन भांजा में कथा का प्रभाव पड़ गया। प्रभाव पड़ गया तो एक दो बार में तो उन्होंने वो आना नहीं चाहे, बोले होगा, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख लिए थे बस, इतने पढ़ लिखने के बाद कोई डिग्री फिग्री नहीं था उनका, सर्टिफिकेट आदि, तो नरहरी सरकार के पास रहने के लिए चाहे, और उनका वैराग्य हो गया। जैसे नरहरी जी को देखे उन्होंने, उनके सानिध्य प्राप्त किए, तुरंत ही उनको वैराग्य, पहले जन्म का तो है ना, याद आ गया तुरंत, बोले अरे ये तो हमारी गोष्ठी के हैं सब, हम क्या करते हैं इधर आकर के, ये नाना नानी मामा मामी व्हाट इज दिस, इसे बेकार है, ये असली है। तो नकल संघ को छोड़ करके असली संघ में जुड़ गए, तो गुरु पादाश्रय के उनको गुरु करके वरण किए। नरहरि ठाकुर देखे वो भी तो नित्य सिद्ध पार से समझ गए कि वो तो हमारे है ही, तो उनको साथ में रखे, तो उनके प्रति इतने स्नेह था कि वो पिता माता नाना नानी को बोले नहीं, वो लड़का रोता है आने से, रोता है वही रहने को, ठीक हम भले जाकर उनको ही देखाएंगे, कुछ खिला पिलाएंगे, कुछ कर लेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम दे देंगे, वहीं पर भले यहीं रहने, रोता है घर में आना ही नहीं चाहता, तो क्या करे जिसके साथ इतने प्रेम संबंध है उसको रोना नहीं देंगे, तो ठीक है वहीं रहे हम जाकर, भले वहीं जाएंगे आपको बस देख रेख करने के लिए, और शुरू से वहीं रहे। तो नरहरी सरकार के तत्वावधान में उनने और भी कुछ पाठ शाठ पढ़े। नरहरी सरकार जानते ना कौन है, नरहरी सरकार श्रीखंड के सबसे एक नंबर के जो वैष्णव है, खंडवासी वैष्णव जो महाप्रभु कभी कभी कहते हैं, खंडवासी वैष्णव है, तो उनमें से प्रधान है वो जो तीन भाई थे, नरहरी और वैद्य कुल के और कौन है डॉक्टर, हाँ मुकुंद, और दूसरा नहीं, चलो ठीक है वही दोनों ही जानते हैं। तो मुकुंद और नरहरी, नरहरी बड़े थे और मुकुंद उनके छोटे भाई थे, और बड़े भाई की तो शादी करने, शादी की दोनों कोई नहीं शादी करते थे, तो लेकिन महाप्रभु हटात एक दिन मुकुंद को बोले, मुकुंद तुझे शादी करना पड़ेगा। अरे भैया सी अभी तो शादी नहीं की, परिवर्तन हो जाऊंगा, मैंने बड़े भाई होते होते वो शादी नहीं किया, मैं शादी कर लूंगा, ये कैसे हो बात। बोले नहीं वो तो शादी नहीं करेगा, आपको शादी करना होगा, मैं क्यों करूं, मैं भी नहीं करना चाहता। नहीं नहीं तुझे करना ही पड़ेगा कंपल्सरी, अब क्या करें, महाप्रभु के आदेश है तुझे करना पड़ेगा। बोले मैं तेरा पुत्र के रूप में आऊंगा तो कैसे शादी नहीं करेगा। अच्छा ऐसा है क्या, तब तो लोग के मारे कोई भी कर लेगा। तो मुकुंद ने विवाह किए थे, तो उनके पुत्र कौन थे, रघुनंदन ठाकुर है ना, रघुनंदन जी। तो ऐसे तो नरहरी, रघुनंदन के गुरुजी भी नरहरी सरकार है, नरहरी ठाकुर है, तो नरहरी ठाकुर, हम गौर आरती में नरहरी का नाम आता ना, क्या पद है वो, हाँ क्या सेवा करते हैं वो, श्यामर आलोक सेवा करते, नरहरी आदि करी श्यामर डुला, वही महाप्रभु के साथ में रहते हैं, उन आरती में उनका भी आरती गान किया जाता है। तो नरहरी के तत्वावधान में बचपन से रहे लोचनानंद ठाकुर, लोचनदास जी ने रह करके वही पढ़े, तो नरहरी ठाकुर के मन में ये हमेशा विचार आता था कि गौरांग महाप्रभु के लीला प्रचार होना चाहिए,
भगवत लीला प्रचार होना चाहिए। और यद्यपि श्री मुरारी गुप्ता और श्री स्वरूप दामोदर आदि कई संस्कृत भाषा में, कवि करण कपूर जी ये सब संस्कृत भाषा में लिखे थे, कई काव्य आदि लिखे थे, लेकिन बोले संस्कृत कौन पढ़ता है, तभी जमाने में संस्कृत पढ़ने में लोग बहुत कम पढ़ते थे, आजकल तो सपना ही है। तो बोले संस्कृत भाषा कौन पढ़ करके समझेगा, आपने लोकल लैंग्वेज में गौर लीला प्रचार होना चाहिए। ये विचार नरहरि ठाकुर के मन में था। तो बेचारे आपने अपने भाषा में कुछ लिखते थे, उनको वो कवि थे नहीं। अब यद्यपि उनका नाम टाइटल था ना, कविराज डॉक्टर थे ना कविराज थे, उनके छोटे भाई तो कवि थे ही, कविराज भी थे कवि भी थे। तो उन्हें कुछ लिखते थे इसे पदावली, लेकिन उनको नहीं लगता था, बोलते थे मैं बताऊं और कोई रिसर्च करके ढंग से कोई लिखे। तो जैसे उनके पास लोचन ठाकुर आ गए तो उनको उन्होंने प्रेरणा दिए कि आप लिखो, उनके पीछे पड़ गए। अब गुरु जी की इच्छा, उनके आदेश, तो उन्होंने फिर इकट्ठा किए किताब जा करके। उन्होंने खुद बोले हैं उनका जो विशेष ग्रंथ है, कई ग्रंथ लिखे हैं लोचनदास ठाकुर, कई ग्रंथ में से सबसे प्रधान ग्रंथ क्या है, अरे चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल है जो प्रधान उनके ग्रंथ है। तो चैतन्य मंगल लिखने के लिए जब प्रेरणा प्राप्त किए तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना होगा ना, कैसे जानेंगे, गुरु से थोड़े बहुत कुछ सुनते थे, गुरु जी बोलते नहीं और जाओ इधर से पता करो इधर से पता करो, तो जाकर के उनमें थोड़े बहुत पढ़े थे, इससे पता चलता है कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान था लोचनदास ठाकुर को। तो उन्हें जाकर के मुख्य करके श्री मुरारी गुप्त ठाकुर के श्री चैतन्य चरितामृतम महाकाव्यम ये संस्कृत ग्रंथ को लेकर आए, उसको लाकर पठन पाठन के पढ़ने लगे। पढ़ करके उसी से जो समझ में आया उसी को लोकल लैंग्वेज, तभी इंडिया डिवीजन नहीं था, बंगाल पाकिस्तान ये सब डिवीजन नहीं था, तो एक था। तो बंगाल में तभी लक्ष्मी पांचाली, सनी पांचाली, इसका पांचाली छंद में मतलब पांच प्रकार के गीत छंद के अनुसार गीत लिखा जाता था, इसे पांचाली गीत कहते हैं। तो ये लोकल संग हुआ करता था। तो उनको नरहरि ठाकुर बोले कि आप लोकल लैंग्वेज में लिखो, तो उन्हें पांचाली छंद में, पांच प्रकार के छंद में उन्होंने गौरांग लीला को लिखना शुरू किया, शुरू किए गौरांग महाप्रभु की लीला। तभी वृंदावनदास ठाकुर भी थे और उन्होंने लिख करके चैतन्य मंगल एक ग्रंथ लिख करके महाप्रभु के बारे में बड़ा भारी ग्रंथ लिख करके प्रोड्यूस भी कर दी। पता चला वो ग्रंथ नवदी वृंदावन आदि भी आ गया, लोग पढ़ने लगे, चैतन्य भागवत इतने सुंदर है वर्णन कर रहे थे। अब नरहरि अपने शिष्य से लिखा रहे चैतन्य मंगल। जब चैतन्य मंगल पूरा हुआ, ग्रंथ पांडुलिपि पूरा हो गया, तब उनको पता चला नरहरि ठाकुर को, अरे ये चैतन्य मंगल कर रहा है कि नामदास ठाकुर चैतन्य मंगल किए हैं, गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको भेजे, बोले ये रॉ कॉपी मतलब पांडुलिपि कॉपी एक हासिल का हाथ में और एक कॉपी करो, उसको लेकर के जाओ। तब तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था कि ये जेरॉक्स मशीन वगैरह तो सब नहीं था कि फोटो कॉपी करके भेज देंगे, हाथ में लिख करके और एक कॉपी, बोले उनको लेकर जाओ, सिर्फ वृंदावनदास ठाकुर को मिलो, उनको प्रणाम करके उनके आशीर्वाद उनको दिखाओ, वो अगर आपके ग्रंथ को मान्यता देते हैं स्वीकार करते हैं तब जाकर आपके ग्रंथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं ठप, क्योंकि उन्होंने चैतन्य मंगल पहले से लिख चुके हैं, आप कैसे दोबारा चैतन्य मंगल लिखेंगे। तो गुरु आज्ञा से लोचनदास ठाकुर अपने एक ग्रंथ का एक दूसरे कॉपी बना करके पूछते पूछते वृंदावनदास ठाकुर के वहां गए। वृंदावनदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के लीला के व्यास है, व्यासावतार है, उनके पास गए। उन्होंने देखे, आप हम सभी मनुष्य का ही साधारण स्वभाव होता है, हम कोई बड़े लागत लगा करके 10-20 साल लगा करके बड़े थीसिस लिखे कुछ लिखे और सेम कॉपी टू कॉपी सेम नाम को दूसरे को ही कर दे, गुस्सा नहीं होगा, हमारे संस्था का नाम कोई लगा देते हैं हम उससे केस कर डालते हैं उसके नाम में, अरे मैं इसे किया हूं तू किस इसे कर लिया, होना चाहिए। लेकिन इसे वृंदावनदास ठाकुर देखे, तुम किसे लिख रहे, लाओ तो सही देखे तुम सही क्या, उन्हें प्रणाम करके बोले आप देखिए इसे कुछ नहीं है, राव ने लिखा, आपको पसंद है तो आप स्वीकृति देंगे तो कुछ आगे चलेगा, नहीं तो नहीं। तो वृंदावनदास ठाकुर लिए, वृंदावनदास ठाकुर सख्यात नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, उनके ही उनके आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, प्रत्येक अध्याय के अंत में नित्यानंद पद हमेशा नित्यानंद प्रभु की वर्णना करते हैं, उनके कृपा से थे। उनने जैसे चैतन्य मंगल ग्रंथ को उसके मंगलाचरण खोले, सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन में उसमें दो लाइन लिखा था, लोचनदास ने लिखे थे, अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, श्री नित्यानंद बंधु रोहिणी रसूत। उन्होंने लिखे थे किसी में जो अभिन्न चैतन्य महाप्रभु के विग्रह है वो श्री अवधूत ठाकुर को मैं वंदना करता हूँ, श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना करता हूँ जो साक्षात बलराम रोहिणी तन है। ये लाइन को पढ़ते ही ऐसे कहा गया वृंदावन दास ठाकुर मूर्छित हो गए, उनके इतनी तन्मयता था नित्यानंद के प्रति, इतने नित्यानंद के प्रति समर्पित थे श्री वृंदावन दास ठाकुर, जैसे उनके प्रभु की वंदना देखे और इस प्रकार देखे अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, वो दो लाइन को पढ़कर ही हाथ से पुस्तक गिर गया, थर थर कम कर मूर्छित होकर पड़े। क्या हुआ, अरे मुझे किताब दिया, ये क्या हो गया उनका, लोग पकड़ेंगे मेरे पार्टी में, क्या कर दिया उनको, उठा करके फिर झाड़ फूंक के कुछ उठे, उठ करके तो उनको आलिंगन कर ली, मतलब मेरे ग्रंथ साइड में रखे, तेरे ग्रंथ मैं स्वीकार करता हूं, यही चैतन्य मंगल होगा, मेरे ग्रंथ बाद में चले, और ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका था। एक ही प्यार को पढ़ करके उन्हें इतने प्रभावित हो गए तो उन्होंने एक व्यवस्था पत्र लिखे, आगे पढ़े नहीं, बोले नहीं मुझे आगे बाद में पढ़ूंगा, अभी मैंने अभी स्टेटमेंट लिखता हूं कि व्यवस्था पत्र लिखे सर नवदीप वैष्णव मंडली के लिए, वृंदावन जो वैष्णव मंडली थे उनके पास लिख करके भेजे, बोले मेरा जो चैतन्य मंगल जो आप लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरित्र उसके नाम चेंज करो ना, यही चैतन्य मंगल होगा, ये वास्तविक मैं चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता के वर्णन किया, उनके ऐश्वर्य के वर्णन किया, तो इसलिए मेरा ये ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत होना चाहिए, इस भगवत्ता के वर्णन है, असली रस तो इसी में है, ये भी निताई की कृपा प्राप्त है, तो इसलिए इस ग्रंथ को मान्यता होना चाहिए, इसी में जो चैतन्य मंगल लिखा है उसी का नाम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मेरे ग्रंथ का नाम चेंज हो जाए, आपने आप प्रणेता ही अपने ग्रंथ का नाम चेंज करके एक पिटीशन लिख करके भेजे। तो इस पिटीशन के आधार पर लोग ने वरिष्ठ मंडल ने फिर बोले आप जब साक्षात ग्रंथकर्ता ही स्वयं बोलते हैं कि नहीं उसको चेंज करो ये नहीं, तो फिर बोले हाँ सचमुच चैतन्य भागवत में भगवान गौरांग महाप्रभु की भगवत्ता ही वर्णन है, वैकुंठपति गोकुलपति उनके बड़े ऐश्वर्य उनका वर्णन किया गया, तो इसलिए उनको चैतन्य भागवत नाम देना समीचीन है, तो इस ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत रखा गया। और वो जो ग्रंथ लोचनदास ठाकुर ने किए थे उनका नाम चैतन्य मंगल रखा गया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरित के ऊपर बंग भाषा में तीन महाकाव्य रचित हैं, एक तो है चैतन्य भागवत, एक चैतन्य मंगल, एक चैतन्य चरितामृतम, चैतन्य चरित्र जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। कविराज गोस्वामी तो बोलते हैं कि मैं तो उनका झूठन खाता हूं, किसका, वृंदावनदास ठाकुर के, वो जो लिख गए जो बचे कुचे मैं भी लिखता हूं, और सचमुच लोचनदास ठाकुर भी वो दोनों से बच करके वो दोनों लीला में जो लिखते हैं उससे कुछ अलग लिखे हैं। ये तीन ग्रंथ को अगर देखें जो बिना संस्कृत भाषा में चैतन्य महाप्रभु के लीला जिसमें वर्णन है, तीन ग्रंथ को जिसमें तीन ग्रंथ के प्रणेता वृंदावनदास ठाकुर, कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्री लोचनदास ठाकुर, ये तीनों के भाव को अगर देखें, तीनों के तीन भाव है अलग अलग प्रकार, महाप्रभु को तीन रूप में उन्हें देखे हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्रीमन गौरांग महाप्रभु को साक्षात ईश्वर, ईश्वर तत्व के रूप में, वैकुंठाधिपति महेश्वर है, आपने भगवत्ता आपने ऐश्वर्य की वर्णना की हमेशा बड़पन उनको दिखा चैतन्य भागवत में, वही गौर सुंदर को महान ईश्वर को श्री कविराज गोस्वामी ने श्री रसराज महाभाव एक स्वरूप करके राधा भाव द्वितीय बलितम उनके रसराज और महाभाव इस रूप को प्रकट किए, उनके माधुर्य को प्रकट किए। राधा कृष्ण के दोनों तनु मिलित तनु करके ये प्रकट करा, जबकि वृंदावन शास्त्र इसे इसको प्रकट नहीं करा, उन्होंने इसको ठोस करके दिए शुरू से ही। सूर्य से वंदना से रसराज महाभाव दुई एक तनु, इस भाव से पूरे चैतन्य चरितामृत को लिखे। और लोचनदास ठाकुर वही गौर सुंदर को जिनको वैकुंठाधिपति करके वृंदावनदास ठाकुर कहे, जिसको रसराज महाभाव रूप में कविराज गोस्वामी वर्णन किए, लोचनदास ठाकुर उन्हीं श्री गौर सुंदर को रसराज श्रृंगार स्वरूप करके वर्णन किए, तो श्रृंगार रस प्राधान्य देकर वर्णन किए। इसलिए तीन प्रकार के भाव तीन ग्रंथ में तीन प्रणेता ने दिए हैं। तो लोचनदास ठाकुर विशेष करके महाप्रभु का जो श्रृंगार भाव तत्व को जो दिए, रसिक तत्व दिए, रस तत्व दिए, तो इसलिए उनके ग्रंथ भी इस दो ग्रंथ से अलग मान्यता रखता है। तो लोचनदास ठाकुर जब डाटा उनको मिल गया तो उनको सारे, तो नरहरिदास ठाकुर उनको बोले कि आप ग्रंथ लिखो, बैठकर वो लिखते थे, गुरु जी का सेवा भी करते थे, और जब टाइम मिलता था एक बड़ा डंगा करके शिखंड के पास में जगह है, निर्जन स्थान, बड़े सुंदर जगह है, बड़े बड़े पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ करके नरहरि बैठते थे, कभी सुन के इसे पढ़ते थे, ग्रंथ लिखते थे। कोई कोचिंग तो ट्यूशन मास्टर नहीं होते, स्वयं पठन करके पढ़ करके समझ करके पांचाली छंद में लिखते थे। तो इतने अवसर में फिर गुरु जी का सेवा भी करते थे आकर के। तो नरहरि ठाकुर को पता नहीं था कि ये बेटा, तभी उनको लगभग 16 साल 18 साल 19 साल तक हो चुका था, बचपन से उन्हीं से रहते थे, वही घर में रहते थे, कभी उनके माता पिता मामा मामी नाना नानी जो आते थे मिल माल के जाते थे, कुछ गिफ्ट आइटम देते, लेकिन रहते थे तो वही, उनसे घर छोड़ने से रोते थे, अपना घर बाड़ी छोड़ के वही गुरुग्रह में रहने लगे। तो एक बार उनको पता चला उनके गुरु जी को कि ये तो विवाहित है, शादी करके मैं इनको ब्रह्मचारी बना चुका हूं, तो शादी क्या हुआ। तो उनको पूछे कि लोचन तुमने पता नहीं, बचपन में मैं पता नहीं, वो छोटा लाला तो क्या, छोटे बचपन में कुछ पता थोड़ी रहता है, शादी होता है क्या पता नहीं होता, और कैसे क्या कर दिए होते पता नहीं छोटे उम्र में, अब एक दो साल में कभी होंगे तो कर दिए होंगे, वो नहीं बता पाए। अब तेरे पति ने मुझे कुछ नहीं पता है पता ही नहीं उनको। और ऐसे नियम होता था, आप सब जानते हैं भारतवर्ष में नियम भी था, जब बाल्य विवाह प्रथा होता था, बचपन में शादी कर दिए होते थे, और फिर जैसे 16-17 साल हो जाते हैं, बेटी बड़ी हो जाती है, बेटा भी बड़ा हो जाता है, दोनों सियाना हो जाते हैं, 16 साल के हो जाते हैं उम्र की, 15-16 साल की उम्र हो जाते हैं, तब फिर उन दोनों को विधिवत एक साथ में सिद्धादित हो चुका है, अब केवल मिलन होता है, साथ में रहने के लिए करते हैं, तो ससुराल में विदा कर देते हैं, अपने ससुराल घर में रहते हैं, वही कथा होता था। तो अभी जब लोचन बड़े हो गए, उनके तथाकथित पत्नी भी बड़ी हो गई, तो अभी उनके पत्नी के माता पिता ढूंढे भाई, अभी दामाद के पास भेज देना चाहिए, अभी बड़े कुड़े लड़की को घर में रखना ये नीति नहीं है, उनको अपने पति के पास भेजना चाहिए। हाँ, पति के पास भेजना, तभी बड़े कट्टर नियम था इस बारे में। तो पता लगा भाई पति कहाँ है, घर में जाकर ढूंढे, पति तो घर में नहीं है, और कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने एक आदमी को भेजे, तभी बस ट्रक तो नहीं चलता था, टेम्पो में ऑटो फटो पैदल में जाना पड़ता था। तो पैदल में एक उनके ससुराल से एक व्यक्ति जो बोलने में बड़े उस्ताद होता है, क्योंकि साधारण यदि भेजे कोई इधर उधर करके भका देंगे, फंसा देंगे, नहीं हम नहीं जाने, जो बोलने में मैंने वकीलाती किया होगा, जो वकालत जानता होगा उस्ताद बोली चाली में, जो कैसे फंसा करके गुरु जी को चेला को दोनों को पटा करके काम हासिल कर सके, ऐसे उस्तादी बोलने लायक लोग को चुन करके और पैसा वैसा दे करके उन भेजे होंगे, उसका खुराक दे करके उनको। तो उनने गया अपने सारे सबूत सारे सब कुछ इकट्ठा करके गया कि जितना है, और जा करके नरहरि जी को प्रणाम करके बैठ करके ऐसे वकालत किया यही से बात पेश किया विचारी नरहरि ठाकुर तो भाई भक्त हैं, भक्त लोग सरल हृदय होते हैं। अब यही से वकालत किया, इसे सामाजिक धर्म और ये धर्म शास्त्र से उदाहरण देते हुए ऐसे बताया कि नरहरि ठाकुर बोले बाबा अब ज्यादा मत करो लेके जाओ। मैं कहा कि मैंने सुना था कि हमारे ब्रह्मचारी जी शादी कर चुके हैं करके, मैं तो तभी से डाउट था, लेकिन उनको पूछा भी उसको पता ही नहीं था पत्नी कैसा है कौन से कहा। लेकिन अब तो आ ही गया, अब सारे सबूत प्रमाण दे करके यही से हाल करता है तो मैं कहां मना करता हूं, मैं धर्मशास्त्र की को सम्मान करता हूं। अब जब उनके पत्नी है तो अब ठीक है, अब नहीं जाते तो पत्नी के पास जाए, उनको पत्नी के लेकर आए ना हम ला कर, नहीं भाई यहां मत लाओ, हमारा यहां कोई आश्रम में जागा नहीं, ना तो फिर उनको भेजो और चले अपने पत्नी को लेकर जाए, अपने जहां लेकर रखे जैसे। और घर में तो नहीं जाता ना, घर में नहीं जाता ससुराल में रहते तो घर में नहीं तो यहां लेकर आना पड़ेगा ना, तो नहीं यहां मत नहीं तो फिर भेजो, दोनों जगह से नहीं रहना पड़ेगा, यहां नहीं रहेगा। हाँ भाई तब क्या करे, तो लोचनदास ठाकुर की बिल्कुल इच्छा नहीं था। ये नियम होता है जिन्होंने बचपन से भगवान की भक्ति में जुड़ गया, भक्ति तो भक्ति को साधारण भक्ति नहीं रस भक्ति, भगवान की रस के टेस्ट जिसको मिल गया वो जो चख लिया, तो इस भद्दा रस ये सांसारिक संबंध के रस को तो याद आने से वो थूक फेंकेगा, उल्टी आएगा उसको, वो टेस्ट नहीं लगेगा उसको। तो जो और रस से रसिक हो चुका है तो उनको इसमें मन नहीं लगा। यद्यपि वो युवक बिल्कुल कुमार अवस्था थे, पत्नी उनके कुमारी अवस्था में थी, फिर भी उनको कोई मन नहीं था, कोई नहीं था उनका मन नहीं था। तो लेकिन क्या करे, वो तो करके बोल दिए, वो हाथ जोड़ के बोले मैं चला जाऊंगा, चला जाऊ बोला मैं बोल चल जाऊंगा। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं तो रहूंगा नहीं, चल दिए। फिर उन्होंने बोले ठीक है भेज देंगे ना इसी दिन के अंदर। तो डेली पूछते थे नरहरि ठाकुर कब जाएगा, ना जाएंगे गुरु जाऊंगा, लेकिन नहीं जाते थे, बिल्कुल इच्छा नहीं था जाने के लिए, इच्छा ही नहीं था, बस ये करेंगे वो करेंगे, बात करते करते महीना दिन, इच्छा ही तो नहीं था जाने के लिए। वो क्या करें, गुरु जी एक दिन पकड़ के डांटे, बोले फिर आएगा वो वकील, फिर आएगा वो लेकर के इस बार न लाए, और तेरे पत्नी को ला कर छोड़ ना जाए इधर, मैं कहां पालू इसको, हम सब भिखारी होते हैं। अब ये कृष्ण भगवान के भक्त लोग तो भिखारी, गोरांग महाप्रभु भक्त तो महाभिखारी होते हैं, है ना नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान तो गृहस्थ थे, साधारण गृहस्थ नहीं थे, ऐसे गृहस्थ की दुनिया में कोई हो ही नहीं पाएगा, ना हुआ ना होगा ऐसे। लेकिन महाप्रभु तो गृहस्थ बन बन करके सन्यास ले ली, तो सन्यासी है, भिकमंगे है, भिक्षु का आश्रम सन्यास आश्रम, तो भिखारी के फलवर्त भिखारी होंगे। तो वो भले भाई न रहे, वो कहां से ले आ गया, क्या कर, तुम जाओ भाई, तुम जाओ, तुम ससुराल में जाओ, ना मैं घर में नहीं जाना, ससुराल में जाओ, घर में नहीं तो पत्नी के पास जाओ। अब गुरु जी ने बाध्य किए, ना चाहते हुए उनको जाना पड़ा। एक दिन बोले रोते रोते प्रार्थना करते करते वो नहीं जाना चाह रहे थे, नरहरि बोले कि देखो तुम अगर सचमुच गौर चरण में प्रीति है तो गौरांग महाप्रभु तेरा सहायता करेंगे, डरो मत जाओ, लेकिन हमको फंसाओ मत। तो उन्होंने रोते धोते गए अकेले, आप प्रार्थना करते करते जाते, महाप्रभु बचाओ मैं कहां फंस जाऊंगा, अब बिल्कुल नहीं चाहता हूं, क्या करूं, बचपन में मुझे फंसाती है उन्होंने, तो गए। अब जा करके पता लगा, उनको पता थोड़ी ना ससुराल तक गए नहीं थे, पहली बार जाते हैं, वो एड्रेस फाड्रेस लिखा पढ़ी करके देगा, तो वकील बड़ा उस्ताद था, सारे लेकर गया था डेटर, वो लेकर के पहुंचे, दोपहर तक पहुंच गए थे, पहुंच करके वो गांव पता कर लिया, यही गांव है, बस वही गांव है, इसी गांव में, और जो एड्रेस मिला था उनके पत्नी के घर, पत्नी के नाम, ससुर सासू और उनके और बाकी जो साला आगरा का सबका नाम दिया गया था, पता लगा करके चलते चलते दो दिन तीन दिन चलकर गए थे, ले दूर था, पहुंच करके भूखे प्यासे वो खा भी नहीं पाते थे बेचारे, बड़े दुख था मन में। जाकर पुष्करणी था, बहुत सुंदर पद्म पुष्करणी था, जिसमें जाके स्नान किए, कुछ पानी पिए, स्नान किए, और थोड़ा गर्मी के समय थोड़ा ठंड लगा, बोले क्या करो, तो वहां एक स्त्री स्नान कर रही थी, तो बोले वो तो कोई ही नहीं है कि इनका घर मार पूछू, बोलते तो लोग बोलते ही गांव है, तो उनको जाकर बोले माता श्री, माँ जी हम बताएंगे उनके घर, उनके ससुर के नाम बोले, उनके घर ही कहा, वो उनको देखने लगे किस लिए, तो बोले नहीं मुझे वो हमारे साथ कुछ ऐसे है जान पहचान है, हमें जाना था, उनका एक बेटी है, उनका नाम भी, उनकी पत्नी का नाम भी बोले, कागज ले था पर्ची देख कर बोल दिए, तो खुद ही थी स्त्री थी, तो माता जी कृपा करके बताएंगे, वो समय बताएंगे क्या पूछते बचन तो नहीं, नहीं नहीं मैं आया वहीं से पता कुछ उनके भेंट करना था उनसे, कुछ हमारा कुछ काम है ना, ठीक है चलो मेरे पीछे पीछे आओ मैं जा ही रहा हूँ, चलो वो उन्होंने पानी भर करके कलसी में वो चली, उनके पीछे पीछे वो चले, जिसी के पास जो उनकी पत्नी है उन्हीं के पीछे पीछे जा रहे हैं, उन्हीं के पीछे माँ जी बताइए माँ जी करके उनके पीछे गए, जा करके उन्होंने बस घर में गए, जा करके उनके पिताजी को बोले कोई आए हैं हमको ढूंढ रहे हैं, हमारा नाम भी बताते हैं और आपके नाम आपको तो जानते ही हैं, तो ससुर साहब पिताजी उनके आए, वो भी नहीं ठीक से जानते थे, वो बचपन में देखे अब तो 15-16 साल के बाद नक्शा बदल जाता है ना, नहीं आप फोटो देखो जब वो 1-2 साल के थे और अभी का फोटो देखो और पहचान पाएंगे, हम ही खुद ही नहीं पहचान पाएंगे, हाय मैं कैसा था यार है ना, नहीं तो तभी जो ना एल्बम तो था नहीं कि देखे मैच कर लेंगे, तो उन्होंने आकर देखे पूछे तो उन्होंने बोला फिर नरहरि ठाकुर के नाम बताए, बोले अपना नाम बताए, बोले अच्छा आप ही हो क्या हमारे दामाद, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर ज्वाई को ससुराल मुझे पहली बार आए जैसे सेवा करना चाहिए, बड़े थान वान में सेवा करने लगे, आप उनको रह करके घर में बुला करके जो पत्नी को बोला बेटी ये बोला हीरा ये तो मुझे मामा कर रहे थे और वो जिसने देखे बोले आप ही हो ना, हाँ माता जी प्रणाम, हाँ बोले भगवान जाने हमारा तो पहले से गुरांग बहादुर नाता ऐसा ही कर दी, आप ही स्वीकार किए मैं भी बोला हम आप कैसे होगा, अब तो ये संबंध हो गया, अब दोनों बड़े परेशान में हो गए और बड़े दुखित भी हुए, रोने भी लगे, अब क्या करें, अब उनके ससुर साहब बोले भाई ये नहीं जानता हूं बहन लेके जाओ, यहां माँ बेटा बनकर थोड़ी काम चलेगा तो विदा कर दिए, अब लोचनदास जी ने क्या करेंगे, बोले चलो लेकिन उनको समझाया, अकेले बैठ के समझा, बोले देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं तो बिल्कुल इस प्रकार हूं, इस प्रकार उनको समझाया, जो गौरगत प्राण है उनके भाव बिल्कुल सरल निस्वार्थ भाव से इसे समझा, उनके पत्नी को भी मान गए, बोले ठीक है आपकी जैसे इच्छा, आप जैसे चाहते हैं मैं आपको सहायता करूंगी केवल आपके भजन में बस, बोले तब चले, तब दोनों गए अपने घर में, गुरु जी ने मना कर दिया यहां मत लाना, तो अपने घर में गए, घर वाले तो बहुत खुश हो गए, बेटा इतने दिन के बाद आया, भाई कोई संतान नहीं था, घर छोड़ के बचपन में चला गया था, बड़ा होकर वापस आया शादी कर, बताओ बाल ब्रह्मचारी अभी आए बन करके अपने आप पत्नी को लेकर के आए आ घर में रहे, लेकिन रहे तो सही लेकिन आकुमार ब्रह्मचारी रहे ना, संबंध नहीं रहा, केवल यही हुआ उनके पत्नी उनको सहायता करती थी, उनके जो एडिटिंग करने वो पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी स्त्री थी, वो जो लिखते थे उनको उन्हें एडिटिंग करती थी, और जो चैतन्य मंगल ग्रंथ प्रणयन में प्रधान भूमिका निभाई उनकी पत्नी ने, वो उनके पूजा में उनके उनके लिए फूल चढ़ाकर चुनकर रखती थी, प्रसाद बनाकर रखती थी, उनके सेवा के लिए सहायता करती थी, उनके ग्रंथ एडिटिंग बस इसी काम में रहती थी, सहायकर अष्टांग गुरु, तो दोनों ही इस प्रकार भाव में व्रत में रहे, व्रत में बाद में जब ग्रंथ लिख करके उनको घर में छोड़ करके आप पत्नी को वो भी खुशी में रहे, बोले आप अपने जो निष्ठा में उसी में आगे बढ़िए, आप मेरे पर कृपा रखिए बस इतने में, तो उन्होंने जाकर के गुरुजी से मिले, बोले कहाँ गए आप सारे कैसे आए, ना नहीं सारे घटना बताए तो नरहरि ठाकुर उनको आलिंगन के, बोले गौरांग महाप्रभु की विशेष कृपा है आपके ऊपर, उन्होंने बचा दिया आपको, हम तो ही चाहते थे उन्होंने बचा दिया आप, अद्भुत ऐसा रहा आपका आपके व्यवहार तो बड़ा अद्भुत है, किसी प्रकार नाटकीय ढंगी से आप बदल बच गए, कैसे बचना बच ही गए, बच करके फिर भी उन्होंने फिर रहे, फिर चैतन्य मंगल ग्रंथ लेकर के जब नामदास ठाकुर के पास गए, वहां से सुकृति लिए, तो कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर उसके बाद में पढ़े फिर ग्रंथ को, इतने अच्छा लगा उसने कवि को पढ़े, पढ़ करके उनको ग्रंथ में और एक वर्णन मिला जो वर्णन उनके भी वो भी नहीं किए थे ना कविराज गोस्वामी नहीं किए, बोलते उसको पढ़कर तो और पति आनंदित हो गए। एक प्रसंग उन्होंने लिखे हैं जो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए थे, संन्यास जिस दिन लिए महाप्रभु माघ मास शुक्ल पक्षे प्रभु करिला संन्यास, मकर संक्रांति के दिन उन्होंने जो गृह त्याग दिए, इस समय में उस रात में सारे बंधु मिलन आदि करने के बाद में विष्णुप्रिया मिलन उनके विवाहित पत्नी विष्णुप्रिया देवी के साथ शयन कक्ष में जो उनके व्यवहार जो उनके बातचीत जो उनके जो लीला है उसके वर्णन ना तो वृंदावन दास ठाकुर किए हैं ना कविराज गोस्वामी किए, उसको वर्णन किए इस पाठ को विशद भाव में किए। उसको जब उन्होंने पढ़े कि विष्णुप्रिया जी के साथ महाप्रभु के क्या बातचीत है, महाप्रभु उनको समझाते हैं, गीता पढ़ाए उनको, उनको चतुर्भुज स्वरूप दिखाए, समझा ये बात किए वृंदावन दास ठाकुर की, ये क्या सही बात है, इसको किसे पता चल गया, उसको इसको किसे पता चल गया, जूनियर है। तो उन्होंने वो कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर उनके मां तो भी बुद्धा थे, बहुत वयस्क का हो चुके थे, नारायणी देवी जाकर उनके मां को पूछे वृंदावन दास ठाकुर, बोले मां ये इसी बात है आपको कुछ पता है इस बारे में, सुने तो माता जी नारायणी देवी बोले अच्छा, बोले कि बिल्कुल फैक्ट है, मुझे विष्णुप्रिया देवी ने खुद बोली थी, विष्णुप्रिया देवी भी तभी जीवित थी लेकिन बिल्कुल उन्होंने महासन्यासिनी के रूप में बिल्कुल अवरुद्ध गृह में रह करके इतने कठिन व्रत ले रखे थे विष्णुप्रिया देवी, कोई नहीं जाते थे उनके पास, निशान ठाकुर जो जाते थे उनको थोड़ा कोई पानी देते नहाने के लिए, खाना तो उनका होता ही नहीं था। आप सुने होंगे विष्णुप्रिया देवी जो ने महाप्रभु के विग्रह अर्चना करते थे, आप धामेश्वर महाप्रभु देखे होंगे, महाप्रभु के एक विग्रह महाप्रभु के समय में उनके गौर विग्रह बनाकर उनको आराधना करते थे, उन्हीं के सामने बैठ करके नाम संख्या जप करते थे, काउंटिंग बीड था नहीं, माला था नहीं, हाथ में गन के जप करते थे, अष्टोत्तर शत 108 माला मन का पूरा होगा, मंत्र पूरा होगा तो जो खाने के लिए चावल एक दाना रखेंगे, एक काउंटिंग बीड में जो काउंटिंग के साथ ना एक दाना रखेंगे, एक माला में एक दाना चावल, फिर एक माला जपेंगे फिर एक दाना चावल, तो दिन भर में आप जप करें कितने माला चावल कितना चावल इकट्ठा हो सकता, अगर हम कंटिन्यूस करते रहे 100 ग्राम कितना चावल आता होगा कभी गिने, 50 ग्राम चावल में कितना चावल किस पीस चावल आएगा, अब एक माला में एक पीस चावल और दिन भर में जितने चावल होगा पता नहीं 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम होगा भाई, इतने ही खाना पड़ेगा खुराक, इतने चावल को ही उन्होंने बैल करके उसी को प्रसाद के रूप में पाते थे। अब अंदाज लगा लीजिए, अब आज थोड़ा ढीला हो गया माला नहीं करूंगा तो फास्टिंग ठीक है, किया तो किया 64 माला कर दिया, 64 राइस खाओ चलेगा, दिन भर के खुराक गिन करके 64 चावल खा, अब 64 चावल तो बॉयल किया करो, चुबा कर खा जाओ, एक साइड में हो जाएगा, दो साइड में नहीं जाएगा, एक दिन के खुराक काबर पेट में दाना डालना है तो हरे कृष्ण करना है, क्या नियम था कड़क, तो कैसे किससे मिलेंगे बात करेंगे, उनको फुर्सती कहां था, दिन रात एक करके इतने तत्परता से नाम, इन पेट दाना नहीं जाए, एक एक दाना पर एक एक माला, ये व्रत ले रखे थे विष्णुप्रिया देवी। लेकिन ये व्रत लेने से पहले जब वो रोती थी, नारायण देवी तो थे उनसे बड़े उम्र के, उनके बड़े थे सीनियर थे, तो रोती रोती जब जिस समय महाप्रभु चले गए थे उनका जो दशा था सची माता और विष्णुप्रिया देवी की, जो इतने महाविषादग्रस्त दशा था, इतने भयंकर रोदन करते थे, उन्हें विकल होकर रोते थे जो नो सासू और बहू, कि पूरे नवदीप के ग्रामवासी जो गंगा स्नान करने के लिए सुबह आते थे देख करके सुन करके उनके रोना धोना, वो सब अपने गामचा फामचा फेंक करके डिसाइड कर जाने दो, घर बाड़ी में सब आग लगा दो, जल जाने दो, हम कोई नहीं जाएंगे घर में, इतने करो इतने दुख देते हैं, हम सब जोगी बनकर चले हैं संन्यास लेकर, जाने दो घर बाड़ी से, यहां तक पूरे नवदीप वासी सब डिसाइड कर लिए, इतने दुख हुआ था। तो ये महादुख के जो वर्णन है, तो उसके समय में भी ये नारायणी देवी भी गई थी, तो उन्हें जाकर उनको सांत्वना देती थी, बहु को बेटी समत करो, रो मत, चलता क्या करे, विधि ही प्रबल है, प्रारब्ध ऐसा था, ऐसा क्या कैसे, ये तो जो अभी दो चार घंटा पहले घटना हुआ था। विष्णुप्रिया देवी उठ करके रो रो के बता देती, वो उन्होंने आधी रात में तो आए बेडरूम में, वो मेरे साथ जो जो बात किए, जो जो किए वो बता देती, रोती रोती बोली थी नारायणी देवी, उसको सुनी थी और सुनी थी बात, भूल गए थे सोचकर। अब बेटा वृंदावन धाम को पूछते हैं, कल माँ ऐसा कभी आपको पता है ये लोचनदास ठाकुर ऐसा लिखा है? बिल्कुल सही बात, विष्णु प्रिया जी ने मुझे बोले थे, खुद स्वयं मुझे बोली थी रोती रोती कि उसके साथ ऐसे व्यवहार किए थे गौरांग महाप्रभु ने। तो ये बात जब उन्हें प्रमाणित हो गया तो बोले बिल्कुल प्रमाणिक ग्रंथ करके जा करके उनको दोबारा लिंगन के वृंदावनदास ठाकुर। तो इस घटना को जैसे वृंदावन ठाकुर आकर के बोले लोचनदास को, लोचनदास गुरु जी की बोले नारायण को ये बात, तो नारायण ठाकुर बोले अच्छा आप एक कपी लेकर के जाओ विष्णुप्रिया देवी के पास, जाकर मिलेंगे थोड़ी, आप जाकर बैठो तो सही, खबर दो उनके सेवक के हाथ में। तो उन्होंने गए फिर नवदीप में, जाकर एक कपी, दूसरा एक कपी फिर लेके हम लेकिन कपी दूसरा एक तीसरा कपी करके उनको लेकर जाकर नवदीप में वैसा ठाकुर बोले माता जी की बोली मैं उनका आशीर्वाद लेना आता आया हूं। तो फिर खबर भेजे, कपी भेजे, तो विष्णुप्रिया जी ने भाई जो जिन्होंने इतने नाम करते हैं तो उनका तो स्थिति कुछ और हो गया होगा, हम तो भद्दा नाम करते हैं जैसे तैसे 24 घंटा में 16 पूरा कर डालते हैं सारे अपराध युक्त विशेष करके, लेकिन फिर भी हमारा खान पान बड़े धूमधाम से चल जाता है, दो चार दिन में एक एक फिस्ट लग जाता है, कुछ नहीं करते हैं कमाई धमाई कुछ नहीं, केवल अपराध युक्त नाम कर लेते हैं 10-20 माला, 20 माला नहीं 15-16, तो इसी में फिस्ट के फिस्ट खा जाते हैं। आप जो इतने त्याग निष्ठा श्रद्धा विश्वास दृढ़ता के साथ कोई नाम करे तो उनका स्थिति क्या हो जाए कोई सोचा जा सकता? तो विष्णुप्रिया देवी उनको पढ़ना क्या है, वो ग्रंथ देखी वो तो समझ गए ग्रंथ में क्या है, तो तुरंत बाहर आई उन्होंने आकर के 3 बार उनका आशीर्वाद दिए उनके सर में हाथ रखे, बोले जाओ ग्रंथ प्रकाशित कर, तब जाकर ग्रंथ प्रकाशित किए जितने मंगल को। तो इस प्रकार जिस ग्रंथ में विशेष करके विष्णुप्रिया देवी की लीला महाप्रभु के साथ जो वर्णन है, विष्णुप्रिया देवी विशेष उसको बोले कम कम से ये बात तो वो लिखे नहीं थे, ये तो मैं ही जानती थी, वो जानते हैं, उसको तो तू कैसे जानकर लिख लिया, तू मेरे अंतर की बात लिखा है, इस ग्रंथ को मैं मान्यता देती हूँ और उसको प्रकाश करो। इस प्रकार अब समय कम है, मैं चाहता था कुछ 2-4 पद जो लीलाओं में लिखे हैं विशेष, तो उसको अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो बड़े लंबा लिखा है उसमें। क्या टाइम हो गया प्रसाद के लिए जाएंगे?
नो,
5 मिनट चलेगा ना, सहन कर लेना भूख कब। प्रभु र व्यग्रता देखी विष्णु प्रिया चंद्रमुखी कहे किछु गद गद स्वरे कह कह प्राणनाथ मोर सिरे दिया हाथ सन्यास करिबे ना कि तुमि सन्यास करिबे ना कि तुमि लोक मुखे सुनिहा विदिते विदरिते हय हिया आगुनिते प्रवेशिव आमि। समझ में आता ना, सिंपल समझ में आ जाता होगा। तो लागी जीवन धन रूप नव जौवन बेश विलास भाव कला तुमि जबे छाड़ी जावे कि का जय छार जीवे हिया पोड़े जेन भी सज्वाला। इस प्रकार के विष्णुप्रिया देवी के कहना है। फिर महाप्रभु कहने लगे ए बोलो सुनिया प्रभु मुरु की हसी आल रहूं कहे सुना मोर प्राण प्रिया
किछु ना करह चिते जे करिहे तो रहिते सावधाने सुन मन दिया।
चिंता मत करो, जो मैं कर रहा हूं आपके लिए फायदेमंद काम कर रहा हूं।
जगते चते का देख मिथ्या करी सब लेख सत्य एक सबे भगवान सत्य आर वैष्णव ताविने जते का सब मिथ्या करी करह ज्ञान।
बोले केवल भगवान और भगवान के भक्त वही दोनों सत्य है, बाकी सारे मिथ्या है।
मिथ्या सुत पति नारी पिता माता आदि करी परिणामे के बाबा का हर श्री कृष्ण चरण वही आरत कुटुंब नाई जत देख सब माया तार।
श्री कृष्ण चरण को छोड़कर के बाकी जो दुनिया में देते सब उनके माया ही है और कुछ नहीं।
किनारी पुरुष देख आत्मा से सवार एक मिथ्या माया बद्धे भावे दुई श्री कृष्ण सवार पति आर सब प्रकृति एक था ना बुझाए कोई। रक्त रेत सम्मिलने जन्म विष्ठा मूत्र स्थाने भूमे पड़ी हय अज्ञान बाल जुबा वृद्ध हया नाना दुख कष्ट पाया देहे गेहे करे अभिमान। बंधु करी जारे पाप बली बंधु करी जारे पाली तारा सबे देई गाली अभिमाने वृद्ध काल बंचे सवण नयान अंधे विषाद भाविया कांदे तबु नहीं भजे गोविंदे।
उम्र तक इनके संभलता फिर भी गोविंद भजन नहीं करते हैं।
कृष्ण भजी बार तरे देह धरी ए संसारे माया बद्धे पासरी आपना अहंकार मत हया निज प्रभु पासरिया शेषे पाया नरक जंत्रणा। तोर नाम विष्णु प्रिया सार्थक करह इहा मिथ्या शोक ना करह चिते ए तोर कहिलु कथा दूर कर आन चिंता मन देह श्री कृष्ण चरिते।
इस प्रकार के संबोधन वाक्य कहे। इस प्रकार कहते हैं वो, आप अधर्जित नहीं हो रहे ना।
आपने ईश्वर हया दूर करे निज माया विष्णु प्रिया पर सन्न चित दूरे गेल दुख शोक आनंदे भरिल बुक चतुर्भुज देखे आचंबित।
अर्जुन को समझाते समझाते विश्वरूप दिखा दिए, विष्णु प्रिया को समझाते समझाते चतुर्भुज दिखा दिए, उनके लिए इतना ही डोज बहुत है। तो विष्णु प्रिया संतुष्ट हो गए, खुश हो गए बिल्कुल, लेकिन थोड़ी देर में फिर रोने लगी।
तबे देवी विष्णु प्रिया चतुर्भुज देखिया पति बुद्धि नहीं छाड़े तब पड़िया चरण तले काकुति मिनती करे एक निवेदन सुना प्रभु।
बोले ठीक है लेकिन एक और बात सुनिए।
मोति अधम छार जन मिल ए संसार तुम्हें मोर प्रिय प्राणपति।
विष्णु प्रिया जी बोले देखो भाई जो भी हुआ ठीक है, आप तो ईश्वर है, आप साक्षात भगवान है, अपना काम के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा वर्थ ना क्या ना, मैं आपका दासी हूं चाहे जो भी हूं, लेकिन मेरा ये महासौभाग्य था आपको पति के रूप में पाया था, अब आप चले जाएंगे मेरा क्या पति तो इसलिए मुझे दुख होता है, रोने लगे। तब इस प्रकार रोना धोना को बड़े लंबा विषय है, महाप्रभु ने तब क्या किए तो आपने माया को ध्यान के बोले अब हो गया अभिनेशन चढ़ा। तो माया देवी आ गई तुरंत, अब ऐसे फंसाए महाप्रभु स्वयं आपने श्री कर कमल में विष्णु प्रिया देवी की अर्धरात्रि में अपने स्नान कक्ष में उनको श्रृंगार किए, उनके श्री अंग को स्वयं महाप्रभु श्रृंगार किए, आपने माला उनको पहनाए, उनको श्रृंगार किए, श्रृंगार करके बड़ी उनको स्नेह प्रेम दे करके अंत में माया देवी बोले अब सुला दो। आप सुला दी उसको, बस बेचारी सो गई। आप उसके भगवान जब करना चाहेंगे ऐसा ही करते, खूब समझाएंगे बुझाएंगे तब फिर काम नहीं करेगा तभी जैसे चढ़ाएंगे लो किसी नहीं मानेगा चढ़ा कर कैसे भी करके चले गए। चले जाने के बाद जो विषाद जो क्रिया ऐसे हुआ तो इस प्रकार के विरह लीला, इस प्रकार के श्रृंगार रस लीला के वर्णन श्री लक्ष्मणदास ठाकुर ने गौरांग महापुरुष का चरित्र में किए हैं श्री चैतन्य मंगल में। श्री चैतन्य मंगल के प्रणेता श्री लोचनानंद ठाकुर, श्री लोचनदास ठाकुर जिन्होंने महाप्रभु के एक अभिन्न पार्षद हैं और उनके गौर पार्षद श्री नरहरि ठाकुर के कृपा प्राप्त है, तो आज उनका विशेष आविर्भाव तिथि है। तो उनका आविर्भाव तिथि में जिसका हैप्पी बर्थडे होता है तो खुश होता है ना, सब गिफ्ट देते हैं। पता नहीं आप लोग उनको क्या गिफ्ट देंगे लोचनदास ठाकुर को, हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे कुछ नहीं तो खिचड़ी खाते समय तो बोल दीजिए खिचड़ी टू यू, कुछ नहीं हो तो कम से कम हम कुछ नहीं दे पाएंगे, अपदार्थ हैं, कुछ पदार्थ हमारे पास है ही नहीं उनके लायक। तो हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके, चिंता करके, मन में कोई खर्चा होता नहीं, परिश्रम नहीं होता, मन में कम से कम उनके चरण को चिंता कीजिए और उनके लिए आशीर्वाद मांगिए। हे प्रभु, आपके शुभ आविर्भाव की तिथि के दिन आप हस खुश मन में, खुशी होकर के, सहृदय चित्त में, उदार चित्त में आपको आपके कृपा दान कीजिए, ताकि आपके जैसा आपके गुरु गौरांग के प्रति चित्त मन था, हमारा भी ऐसा ही चित्त गुरु गौरांग के प्रति लगे रहे। हरे कृष्ण। श्री गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमाणंद।
महाराज की Thank you.
Thank you. Thank you. महाराज जी का भक्ति अच्छा।